हमको दिखा रहे हो। पहले तो थे बुलाते, पहले तो थे बुलाते, मधुबन में अब वतन में करके हमें इशारा, फिर से बुला रहे हो। साकार में मिलन का, साकार में मिलन का, कमरा ही तो है बदला, कपड़ा ही तो है बदला, बाकी वही है सारा। बाबा सुना रहे हो, आखिर तलक रहेंगे, आखिर तलक रहेंगे, बच्चों के साथ हर पल वादा वो प्यारा प्यारा, अभी निभा रहे हो। साकार में मिलन का, साकार में मिलन का, जिस राह पर स्वयं तुम बाबा बढ़े चले थे, जिस राह पर स्वयं तुम बाबा बढ़े चले थे, उसी राह पर हमें भी बाबा चला रहे हो। बनकर विदेही बैठे बाबा वतन में जाकर, आकर वतन से खुद सा हमको बना रहे हो। साकार में मिलन का, साकार में मिलन का, साकार संग वाले प्यारे से दिन निराले, आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले, वो दिन सुहेज वाले, हाथों से वो खिलाना, गोदी में वो बिठाना, नैनों में वो समाना, आंसू को पोंछ करके, आंसू को पोंछ करके, बड़े प्यार से उठाना, अपने गले लगाना, वो प्यार से उठाना, कह कर के बच्चे बच्चे, कह कर के बच्चे बच्चे, वो खेलना खिलाना, वो सैर का कराना, आगे को बढ़ते जाना, वट वृक्ष के तले तक, वट वृक्ष के तले तक देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आँखों में आँसू आना, वो लाल अक्षरों के, वो लाल अक्षरों के खत याद है अभी भी, वो दिन साकार वाले, भूलेंगे ना कभी भी, ये प्यार भी न कम है, ये प्यार भी न कम है। आंखें भले ही नम है, वो प्यार बाबा अपना अब भी दिला रहे हो। मालूम हमको आंसू, मालूम हमको आंसू, आंसू नहीं ये मोती, इन मोतियों को चुन चुन माला बना रहे हो। साकार में मिलन का, साकार में मिलन का, साकार में मिलन का।
सम्भव
ओम शांति। बाबा का यह स्थान भले ही छोटा है लेकिन प्यारे बाबा का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए बाबा बाहे पसार के सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। और आज हम सभी जानते हैं प्यारे बाप दादा का स्मृति दिवस है, प्यारे ब्रह्मा बाबा की यादें सबके मन में ताजा हो रही है, तो सभी से ये नम्र निवेदन है कि आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या फिर साइलेंस कर दें, क्योंकि सभी के मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल बजते हैं, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए इस दिन को हम बहुत अच्छे से मनाएं, उसके लिए जरूरी है कि हम सभी मौन में रहे और जितना साइलेंस का वातावरण बना रहे वह अच्छा है। बाकी हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर स्थान की बैठने की जगह नहीं है, जो पट में बैठे हैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा आगे आगे और नजदीक नजदीक हो जाएं, जितने बैठ सकते हैं और बैठ जाएंगे। और जो लोग खड़े हैं सभा में, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में भी बैठ सकते हैं और पांडव भवन के आंगन में भी बड़े स्क्रीन पर आप मुरली सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर खड़े ही रहेंगे तो दूसरों के लिए भी अव्यवस्था हो जाएगी, तो कृपया आप हमारा निवेदन स्वीकार करें। और जो व्यवस्था में नीचे भाई बहने हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि जो नए अभी शांतिवन से पहुंच रहे हैं उनको आप बता दें कि ऊपर स्थान नहीं है और उनको मेडिटेशन हॉल अथवा पांडव भवन के प्रांगण में मुरली सुनने की रिक्वेस्ट करें। अब यहाँ ओम शांति भवन में बिल्कुल जगह नहीं है बैठने की, अभी से ही हॉल भर चुका है। और अभी आदरणीय सुदेश दीदी जी हमारे बीच में हैं, हम दीदी जी के द्वारा प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे, उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा, शशि बहन जी हमारे बीच में आएंगे, संदेश के बाद सभी जब पांडव भवन में जाएंगे तो भाई लोगों से विशेष अनुरोध है कि इंद्रप्रस्थ के पीछे एक छोटा गेट बना हुआ है, सभी भाई लोग वहां से ही शांति स्तंभ की तरफ प्रवेश करेंगे, बाकी जो भी बहने हैं वो मुख्य गेट से मेन गेट से ही अंदर जाएंगे। और अभी आप सभी से निवेदन है प्लीज और आगे आकर के स्थान ढूंढने की कोशिश ना करें, और जो खड़े हैं प्लीज पांडव भवन में जाकर के आराम से बैठे।
शांति ओम शांति ओम शांति ओम प्रेम ओम प्रेम ओम आनंद ओम आनंद। आज अति प्यारे सर्व के प्यारे और न्यारे साकार में रहते निराकार और अव्यक्त स्वरूप का दर्शन कराने वाले और अव्यक्त बन करके अपने भिन्न भिन्न कर्तव्यों को चित्र चरित्र को बाबा के रचे हुए हर चित्र से बाबा की शिक्षाओं का बाबा के प्यार का बाबा की शक्ति का बाबा की शुभ भावना का बाबा के कल्याण की भावना का एक एक कण में प्रैक्टिकल में इस रूहानी वातावरण में जैसे सुगंध फैल जाती है ऐसे सूक्ष्म रीति से साकार बाबा द्वारा जो निराकार ने प्रैक्टिकल में रूहानी रूहानियत की खुशबू फैलाई, दिव्य गुणों के गुलदस्ते खिलाए, चैतन्य देवी देवताओं के चित्र बनाए, शिक्षाएं दी, तो आज बाबा की साकार रूप की भी शिक्षा और अव्यक्त स्वरूप के भी मधुर महावाक्य है। साकार और अव्यक्त और निराकार, साकार में समय है, निराकार साकार रूप में आकर के प्यार दे सके। परम धाम से प्यार नहीं मिला, परम धाम में शांति हो, धाम में होते भी आत्मा को अनुभव नहीं, तो परमात्मा के जितने भी शक्तियां अथवा गुण है उसका आधार साकार है। तो आज साकार स्मृति के दिवस, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त मनाना, दिन मनाना, और बाप दादा का फिर आज आना विशेष 18 जनवरी को ताजपोशी मनाने के लिए। हर एक के सिर पर ताज, चाहे टोपी का ताज है, चाहे शाल का ताज है, परंतु बाबा तो लाइट का ताज, राज का ताज, सतयुगी ताज दारी बनाने के लिए फिर से साकार लोक में साकार बनकर, चाहे वीडियो द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, अनेकानेक अनुभव बाबा के हैं, पर अभी तो हम बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 18 जनवरी ओम शांति, क्योंकि आज के दिन के पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर क्या करना है, बुद्धि रूपी झोली भरी क्या करना है, दान भी करना है, दूसरों को रास्ता बताएंगे, जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना कितना प्यार से बच्चों को बैठ के पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे, बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं, एक बात ही कहते हैं, उसमें तकलीफ नहीं है। वो एक बात जिसमें शक्ति भरी है, संबंध जुटा है, नजदीक आत्मा आती है, पवित्र बनती है, वो एक ही बात है, क्या कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। फिर दूसरी बात कौन सी सिखाते हैं, चक्र को याद करो। याद कैसी होनी चाहिए, याद बाप की याद दिल को ठहरा ठंडा शीतल करनी चाहिए, हृदय ठहर जाए, ये सिंधी शब्द है, शीतल हो जाए, शीतलता से भरपूर। एक और दूसरा, एक तरफ तो शीतल, दूसरी तरफ बाबा की लगन की अगन, याद सतानी चाहिए। तीसरी तरफ जो बाप से वर्षा मिलता है वो कितना ऊंचा है, कितना भारी वर्षा मिलता है, ये याद रहना चाहिए। एक याद में कितनी याद समाई है। फिर अपने आप को चेक करना चाहिए कि हमारा बाप के साथ कितना लव है। दूसरी बात, हमारे में कहां तक दैवी गुण आए हैं। क्यों कि तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल। फूल बनना माना सत्व प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए, सत्व प्रधान बन गए, फूल बन गए, फिर यहां नहीं रह सकेंगे। फिर तो गार्डन गोल्डन एज फ्लावर की दुनिया। फूल बन गए तो यहां नहीं रह सकते, क्योंकि बाबा फूलों का बगीचा स्वर्ग बनाने आया है। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन फूलों को ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। पहले का आशीर्वाद मिलेगी, अब कहा सच्चा खुशबूदार फूल बनेंगे। तीसरी बात, वो फूल कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। अभी कभी कभी कांटा लगाते हो? नहीं लगाते। कांटा किसी को नहीं लगाते हो? कांटे का मतलब क्या? क्रोध भी बड़ा कांटा है। क्रोध करते हैं, होता आ जाते हैं कभी, कांटा लगा दिया, चुभा दिया। खुशबूदार फूल बनने की तो बात ही छोड़ो। क्रोध भी किसी को, क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। तुम बच्चों को कांटों की दुनिया से, तुम बच्चे से किनारे आ गए हो, पार कर दिया है वो रास्ता। तुम तो संगम पर हो। जैसे माली, किस लिए कहते हैं संगम पर, है तो कलियुग की दुनिया पर तुम संगम पर हो। बड़ा सुंदर मिसाल दी है, जैसे माली फूलों को अलग गमले में रखकर, बर्तन में रखकर के निकाल के रखते हैं, तो संगम जो है ये गमला है। नर्सरी में बाबा ने फूलों को रख दिया है। वैसे तुम फूलों को भी संगम युगी पॉट में अलग रख दिया है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे और कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे, विकारों रूपी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं कि परलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, सच्चे सच्चे, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनकी निशानी क्या है? वो सदा खुश रहेंगे, खुशी रहेगी, नशा चढ़ेगा। हम विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, नशा है, खुशी है, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। ऐसे नहीं, हाँ वर्षा मिलता है खुशी, पुरुषार्थ से वर्षा मिलता है, विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। अनन्य बच्चे जो हैं, उनको सदैव ये याद रहेगा कि हम पुरुषार्थ जो कर रहे हैं अपने लिए ही, फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा भी रहे, निश्चय भी रहे, निशाना भी पक्का हो और डिटर्मिनेशन भी हो, और कोई क्रेडिट किसी से लेने की बात नहीं है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध हमको ही मिलनी है। बाप कहते हैं हम अपने लिए ही वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करें, ये जिम्मेवारी रहे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको अजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भर के दान करना है। ज्ञान का सागर तुमको रोज ये रत्नों की थाली भर के देते हैं। ये थाली है, ट्रे है, भर के रत्नों की थाली भर के देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं, धारण करते हैं फिर दान करते हैं, वो सभी को प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, मतलब पकड़ लेंगे बाबा को, बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। प्राणेश्वर नॉलेज का वरदान फिर ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, मनुष्य देवता बन जाते हैं, मोहताज से सिरताज बन जाते हैं, कंगाल से मालामाल बन जाते हैं। इसको कहते हैं इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, और दूसरी बात कशिश रहेगी, बाबा की कशिश रहेगी। सुई साफ होती है तो चकमक तरफ खिंच जाती है, मैग्नेट की तरफ खिंच जाती है, तो बाप की याद से कट निकलती भी जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अब गफलत मत करो, सुदर्शन चक्करधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सुदर्शन चक्करधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो तुम कैसे बन जाएंगे? जैसे ज्ञान के सागर, सागर की निशानियां क्या है, ज्ञान के सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट जब टीचर बन जाते हैं दूसरों को भी दान करेंगे, ये तुम्हारा धंधा है ना, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, और तभी तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो बाप सदैव बच्चों से पूछते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्करधारी होकर के बैठे हो? वो तीसरा मंत्र जो बाबा ने पल परसों बताया, हम सो हम ही थे श्री लक्ष्मी नारायण, हम ही बनेंगे। तो स्वदर्शन चक्करधारी होकर के बैठे हो, बाप स्वदर्शन का ज्ञान देते है ना, तो स्वदर्शन चक्रधारी। बाप आया तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने, यह है प्यार की दो बात। अभी तुम बच्चों बगैर है तो परम धाम में बैठे होते हैं, उसकी अनुभव सुनाया, तुम बच्चों बगैर हमको जैसे बेआरामी हो जाती है, समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, बच्चों अब तुमको घर चलना है, फिर वहां से तुम आप ही चले जाओगे सुखधाम, मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, मैं स्वर्ग में नहीं आऊंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी सतयुग में। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर पड़ेगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए, आत्माभिमानी हो थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। नेक्स्ट धारणा की पॉइंट, अपने पर अटेंशन। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती। दूसरी बात, पहले अपने को सुधारो, खुद याद करेंगे नहीं और दूसरों को कहेंगे, कहते रहेंगे याद करो, ये ठगी नहीं चल सकती, ये ठगी नहीं चलेगी। और अब दिल अंदर जरूर खाता रहेगा, कॉन्शियस बाइट करेगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा दूसरा कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अंत में तो सब भूल ही जाना है, बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है, पर पतित आत्मा तो जा नहीं सकती, वो तो पतित पावन आत्माओं का घर है। ये शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, ये पांच तत्व यहां रहने के लिए खींचते हैं। क्यों? कि आत्मा ने ये प्रॉपर्टी अपनी ली है, पर्सनल बॉडी प्रॉपर्टी है, इसलिए शरीर से ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकल जाए, इस प्रॉपर्टी से भी ममत्व निकल जाए, अपने घर चलना है। वहां तो पांच तत्व है ही नहीं। सतयुग में शरीर योगबल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है, वहां दुख नहीं होता है, शरीर को कभी को रोग नहीं है। बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहां पांच तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती, शरीर मरने से डरते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, नहीं तो इसमें तो और खुश होना चाहिए, पर कारण है पावन नहीं बने हैं। पावन बन जाएंगे तो चीजों से ममत्व मिट जाएगा, तो शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, बहुत सहज शरीर छोड़ देंगे। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व मिटा देना है, इनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। बस हम जाते हैं बाबा के पास, इस दुनिया से अपना बैग बैजेक तैयार करके पहले से भेज दिए है, इंश्योरेंस भी करा दिया है, ट्रांसफर कर दिए है, साथ तो ले जा नहीं सकेंगे, बाकी आत्माओं को जाना है। ये पतित शरीर नहीं, प्योर बना करके इंश्योर कर दिए हुए, इसलिए सुंदर सत्व प्रधान शरीर मिलेगा। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है और प्रॉपर्टी का भी साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवरातों के मैल वह मिल जाएंगे, सुखधाम है तो सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना बिल्कुल नहीं है। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मां में कम याद करो। और दूसरी बात, व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए विचार सागर मंथन करो। ड्रामा का राज, पहले बाबा ने कहा बाप की याद से शीतल हो जाएगा हृदय। अब ड्रामा की याद, और ड्रामा चक्कर को भी याद करो, ड्रामा को भी याद करो। ड्रामा की के राज को समझने से बुद्धि भी एकदम शीतल हो जाएगी, गुस्सा नहीं आएगा। जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी हिलेंगे नहीं, डगमग नहीं होंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो संभाल भी करेंगे। तो बाप, तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तो तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारा ये बेहद की शांति अर्थात योग बल की कमाल क्या होगी, शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रह करके तो देखो, जैसे याद बाबा कहते हैं, याद में रह के देखो। और फिर जब सेवा करते हो तो देखो ये हमारे कुल की आत्मा है या नहीं, तुम्हारी शांति का प्रभाव उन आत्मा को एकदम शांत करता है। अगर एकदम शांत हो जाएगी हमारे कुल का है, जो इस कुल के होंगे उनको इन बातों का रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं बाबा को, बाबा प्यार करते हैं। तुम याद करते हो तो बाबा प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार करते हैं। ये भी जानते हो जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो ही जास्ती पढ़ेंगे और उनके चेहरे से पता चलेगा, उनके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा उस समय बाप को देख रही है, तो ये मिलन का अनुभव चेहरे से पता चलेगा, बुद्धि शीतल हो जाएगी। बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं तो बाप भी समझते हैं, मैं इतनी छोटी बिंदी को पढ़ाता हूं, क्या शरीर नहीं देखता हूं, परंतु वो बिंदी चमकती है, चेहरा चमक जाता है। वो बिंदी प्यार का स्वरूप बनती है, तो नैनों से मोती निकलना शुरू हो जाते हैं, वो स्वर्ग याद आता है, आनंद का झूला झूलने लगते हैं। तो चेहरे से पता चलेगा बराबर सच्ची याद है, पक्की याद है, लगन वाली याद, सताने वाली याद है, पर आनंद भरी याद हो। आगे चल करके तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, शक्ल बहन की होते हुए भी वृत्ति दृष्टि पर ध्यान, ज्ञान सुनाएंगे, सिर्फ भाई भाई को सुनाएंगे, बहन बहनों को सुनाएगी क्या, नहीं, कोई को भी सुना रहे हैं, चाहे शक्ल बहन की है चाहे भाई की है। दृष्टि कहां जाए, फीमेल को देख के आकर्षण नहीं, मेल को देख के आकर्षण नहीं, दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, ये मेहनत करनी है। ये बड़ी महीन बातें हैं और बुद्धि के लिए पढ़ाई बड़ी ऊंची है। भजन करो तो इस पढ़ाई का पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी बहुत सारी जो पावर है इस पढ़ाई और याद में है। भले सारी दुनिया की सब बातों से वजन करो, वैल्यू इसकी है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिखी लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। प्यार भरी याद दिए ना। अच्छा अव्यक्त महावाक्य, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। दो बातें विशेष, यूनिटी की विशेषता, अपनी भी विशेषता। एक रस एक टिक, क्या मतलब? एकाग्र, स्टेबल, स्थिर, ये पर्सनल अवस्था। एक रस तब होंगे जब बाबा के साथ सर्व संबंध का रस होगा। एकाग्रता से है बाबा की सर्व शक्तियों का रस लेने वाली एक टिक, एकदम कंसंट्रेटेड हो जाएगी वो सेकंड में। अव्यक्त स्थिति सेकंड वाला अभ्यास पक्का हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी बन जाएगी। महावीर अर्थात ये ओरिजिनल मुरली, अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 75 की। महावीर अर्थात विशेष आत्मा, ये ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता। वर्तमान समय ये होनी चाहिए जो एक ही समय संगठन, जो भी जितने भी बैठे हैं, जितने भी साथ में काम कर रहे हैं, एक रस अवस्था ऐसी होनी चाहिए सबकी, एक रस एक टिक स्थिति हो। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में रहना चाहिए, रहना चाहे, उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में हो जाए। संगठन का बल, संगठित रूप में सब किए, संकल्प रूपी उंगली एक ही हो। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है, एक रस एक टिक एकाग एकता, तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर, बीज रूप पावरफुल स्थिति, एक रस स्थिति, स्थित हो जाओ। ऐसा अभ्यास है ऐसे नहीं कि मनन करने की स्थिति में हो रूर्यान कर रहा हूं और कोई वक्त स्थिति में स्थित वो जो एक ही संकल्प में वो जो पावर है ऑर्डर है बीजू होने का और कर रहे रूरियन तो ऑर्डर नहीं माना ना ये जैसे कि रूहानी ड्रिल है स्टैंड जैसे ना अटेंशन प्लीज स्टैंड एट ईज मिलिट्री वाले सारे एक ही ड्रिल एक जैसी करेंगे ना तो ये एकाग्रता की एक स्थिति की एकता की एक संकल्प में दृढ़ होने की ये अभ्यास कब होगा संगठन में भी उसका सफलता कब होगी जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे वो इंडिविजुअल पुरुषार्थ है हलचल होती है व्यर्थ संकल्पों की इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली बनाओ व एक मत बनाने के लिए एक मत बनाओ एक ही संकल्प में सब स्थित हो जाए एक ही आज्ञा का सब पालन करने वाले बन जाए कौन सी शक्ति चाहिए व्यर्थ चले ही नहीं क्यों क्या होवे ही नहीं कौन सी शक्ति दो शक्तियां चाहिए एक तो विश्वास एक दूसरे में ट्रस्ट फेथ दूसरा समाने की शक्ति कोई बात किसी की हो गई संभालो संगठन को जोड़ने का धागा फेथ है किसी ने कुछ किया मानो रोंग भी किया लेकिन संगठन का प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा क्यों क्या मैंने जाकर के ट्रस्ट नहीं छोड़ो संगठित रूप में जहां सर्विस है वहां उनके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख क्या भावना रखो उसमें भी कल्याण की भावना होगी इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है ट्रस्ट विश्वास से ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब सफलता हो सकती है कोई ने भूल कर दी समाने की शक्ति नहीं क्षमा की शक्ति नहीं उनका ट्रस्ट निकल गया पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए जैसे कोई अपनी गलती को महसूस करता है तो उसको कभी फैलाएंगे तो नहीं ना संभालेंगे ना अंदर पुरुषार्थ से उसको हटाएंगे दूसरा कोई फैलाएगा तो बुरा लगेगा ट्रस्ट का मतलब क्या है फेथ का मतलब क्या है व्यर्थ इस प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए व्यर्थ संकल्प चलाने नहीं चाहिए बल्कि उन्हें क्षमा देना चाहिए। लौकिक में किसी की गलती होती है, कोई दूसरा बोल रहा होता है, बोलने देते हो, जाके दूसरे तीसरे को बोलते हो क्या जाके, उसने नहीं ये बात नहीं थी बेचारा, हमेशा तो ऐसे है ना, हमेशा अच्छाई को याद कराएंगे। तो ट्रस्ट का परिभाषा, इतना एक दो में फेथ हो, जैसे अपनी बात समा लेते हो, मुख से नहीं बोलते हो, ऐसे दूसरे की बात नहीं बोलो, उनकी विशेषताओं को याद करके अंदर संभालो, अवगुण भी कोई भूल हो भी गई तो। बाबा ने कहा था भूल को रिपीट करना महापाप है, ये पिछले थोड़े समय पहले की मुरली थी, साकार की थी वो मुरली। और भूल को भूल जाना महापुण्य है, क्योंकि तुम्हारा समय वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारे योग में विघ्न नहीं पड़ रहे, तुम वातावरण को खराब नहीं कर रहे हो, इसलिए पुण्य का काम कर रहे हो, नहीं तो पाप का काम हो रहा है। इतना फेथ हो और इस अनेक की शक्ति से वातावरण को ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति में घर की कोई बात बार नहीं करते ना, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान पहुंचता है, यज्ञ को ही नुकसान पहुंचता है। तो कई ऐसे संस्कारों वाले हैं, वो जाकर के कहा ना कहा उस लीक करेंगे, एक्स्ट्रा बोलेंगे, फ्रेंडशिप से उनको जाके बताएंगे, घर का भेदी लंका ढावे। हाँ पहले खत्म कर दी, इसीलिए संगठन नहीं तो घर का ही नुकसान होता है।
मुझे अनाउंसमेंट करनी है बीच में,
मैं सुन नहीं रही हूँ, दिखाओ,
मेरे को अनाउंसमेंट करना है बीच में,
इधर से आके बोल, अनाउंसमेंट करना है।
मुरली रोक करके बीच में अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है, किसी मधुबन के ही भाई ने ट्रांसपोर्ट के सामने जो सीआरपीएफ का बंगलो है उसके सामने एक गाड़ी खड़ी की है, जिसके कारण बहुत बड़ा जाम लग गया है। कृपया जिसकी भी है, गाड़ी नंबर मैं बता रहा हूँ, GJ01HS1998, ये क्वालिस गाड़ी है, जिसकी भी है कृपया तुरंत जाए और गाड़ी वहां से हटाए।
ठीक है, अच्छा। तो लौकिक रीति भी घर की बात को बाहर नहीं करते, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में, साथी ने जो कुछ किया उसमें कुछ रहस्य होगा ना, कर्मों का हिसाब किताब, कोई ना कोई उनका पुराना दुश्मनी माया बीच में चांस ले लेती है, स्वरूप नखा आकर के लक्ष्मण को लक्ष्य से गिरा देती है, रावण आके उठा के चुरा के ले जाता है, कोई रहस्य होगा तो उसमें अपनी बुद्धि क्यों भ्रष्ट करते हो। तो यदि रॉन्ग कर भी लिया तो उसको तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया जरूर कुछ रहस्य होगा, उनसे जो कुछ भी हुआ रहस्य होगा, रॉन्ग भी किया तो उसको भी परिवर्तन कर देना चाहिए। तो दो प्रकार का फेथ, उनकी विशेषताओं का फेथ, दोनों प्रकार के फेथ को रख के एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। तो समाने की शक्ति भी चाहिए, फेथ और समाने की शक्ति। व्यर्थ संकल्प को समाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान से नहीं मिलाना चाहिए, इसने तो पहले भी ऐसे किया था। अरे आपको क्या पता, ये तो मैंने देखा है, ये पहले ऐसा करता रहता था, सबसे बातें करते रहते थे। तो ज्ञान की कर रहे हैं या किस पर तुम्हारा क्या जाता है? तो पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट से मिलाते हो तो पता क्या होता है, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, संशय का घर द्वार खुल जाते हैं। पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तब क्यों लगती है, और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यों है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति नहीं हो सकती। दूसरों की गलती इसको अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। वो तब होगा जब एक दो में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, उसके लिए समानने की शक्ति चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल संभालो, देखा भी सही सुना भी सही तो भी नहीं वह फैलाओ। देख सुन देखने सुनने के बाद भी आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करो, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे ना, अभिरहम की भावना कम रहती है। फैलाते क्यों हो, समाने की शक्ति नहीं है, फेथ नहीं है, रहम की भावना कम है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है, ये चार खोट अपने में है। ऐसा पावरफुल संगठ होने की सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर सिद्धि आप में स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने झुकेगी, आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है? दोनों बातें चाहिए, स्टेज पावरफुल है, प्रकृति दासी है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है? तो सदा काल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। इसलिए संगठन की शक्ति चाहिए, संगठन की शक्ति। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। परिवार का सामना करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। सामना करने की शक्ति माया के का सामना करने की यूज करनी, आपस में नहीं। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो माया के आगे यूज करनी है, माया का सामना करना है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं बन सकता। यूथ बड़ा कोई होते है ना, खास करके छोटे, ज्यादा गहराई का ज्ञान योग नहीं है, बस ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि, तो बाबा कहते नहीं करनी चाहिए। कोई भी बात नहीं जचती है तो एक दो का सत्कार करना चाहिए, उस समय से भी शांत रहो, उस समय किसी भी संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं, तुम खड़े होकर के सिद्ध कर रहे हो, जिद कर रहे, कोई भी बात जचती नहीं है, तो रिस्पेक्ट दो। उस समय किसी के संकल्प को कट नहीं करो, कट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब अपना लेसन क्या सीखने, समाने की शक्ति। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों को के आपस में संपर्क की भाषा, तीसरा लेसन आपस में संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की भाषा होनी चाहिए। कैसी भाषा? जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं, फरिश्ते की भाषा। अवगुण से रिश्ता नहीं, उसके गुण से रिश्ता, उनकी विशेषताओं से रिश्ता। तो वाणी लाइटनेस कल्याणकारी होगी। और आत्मा आत्मा से बात कर रही है, वाइब्रेशंस की भाषा। फरिश्ते की भाषा, आत्माओं से आत्माओं की भाषा। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना। किसी दूसरे ने गलती देखी, आपको सुनाई, आप स्वीकार नहीं करना और न कराना चाहिए। इसने किया गलती ना, ये अपने गलती मान ली है ना, गलतियां मान ली है ना, ये क्या है? तो स्वीकार न करना और दूसरों को न कराना। जब ऐसी स्थिति हो तब बाप की शुभ भावना के संगठन एक हो, ये प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभव। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो अपने परिवर्तन का? आपस में लेन देन करो, ऐसा संगठन बनाओ। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे। जब विशेष योग के प्रोग्राम और अपनी पुरुषार्थ की लेन देन करेंगे तो विनाश की ज्वाला को पंखा लगेगा। आग भड़कती है, जब आग थोड़ी बुझना ठंडी हो जाती है तो पंखा लगाते हैं ना, आग भड़क उठती है, तो विनाश की ज्वाला उठेगी। अग्नि, योग की अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा अच्छा, ओम शांति। वरदान, अव्यक्त वतन में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी, ये तो सभी बैठे हैं, सफेद वस्त्रधारी। दूसरा कुछ देखना, दूसरी चीज है लाइट के ताजधारी, सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव, लाइट के ताज वाले। जैसे अभी ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, देखो कैसी कंसंट्रेशन खत्म होती है। उस वो अपना काम कर रहे हैं, देख रहे हैं का रुमाल कैसे बिछा रहे हैं, टेबल कैसे ला। अभी बाबा ने बोला एकाग्रता और एक धारणा अपने पर। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है, सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहां से आए हैं, ऐसे जब चारों ओर फरिश्ते का रूप साक्षात्कार कराओ, इसको कहा जाता है डबल सेवा। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे फरिश्ते नजर आए, लेकिन ये तब होगा कब, जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। स्लोगन है, सर्व गुण व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। मेरे बच्चे बंधन में, अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो और स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व का परिवर्तन कैसे करेंगे? विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे सहज ही सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जब तक संदेश आवे, बाबा के बहुत चरित्र याद आ रहे हैं, चित्र भी सामने है तो चरित्र भी सामने है। जितने भी अभी कोई समझेगा, इतने सारे बाबा के फोटो जहां तहां लगाए हैं, कोई पूछ सकता है? हम कहेंगे हमसे पूछो। हर चित्र में चरित्र है, खेल में भी चरित्र है, तो धोबी घाट में धोबी बनने का भी चरित्र है। बच्चों के साथ बच्चा, सेवाधारी के साथ सेवाधारी बन जाना, पढ़ाई पढ़ने वालों के साथ स्टूडेंट बन करके बाबा की मुरली को ऐसा एकाग्रता से, अभी इतना बाबा ने बाबा की शिक्षा को अपने जीवन में समाया, जो दृष्टि में बाबा, बाबा के मुस्कुराहट से बाबा नजर आते थे, बाबा का हाथ पकड़ो करंट लगता था। फिर बाबा को कोई कहते थे कि आपको, यानी शिव बाबा है इसमें या ब्रह्मा बाबा है, आपको कैसे पता चलता है? हमने कहा हमको तो क्वेश्चन ही नहीं उठता था कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं। हमको बाप दादा ही नजर आता था, दोनों बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं बस। क्योंकि बाबा के दृष्टि में वो बच्चे बच्चे कह करके जो नजदीक अपने ले आए, वो नजदीकी का संबंध और रूहानी प्यार के संबंध से आत्मा को हर समय जो भी बाबा कर्तव्य करते थे। मेरा लास्ट का अनुभव है, पहला अनुभव भी मैंने बाबा को, मैं बाबा ने बहुत सारे वरदान भी दिए ज्ञान के हिसाब से, सेवा के कैसे करनी चाहिए वो भी सिखाया है, कोर्स कैसे कराना चाहिए फॉर्म भरा के ले आते थे, फिर बताते थे कैसे किसी को धर्म के आधार पर, किसी को लौकिक पिता का नाम पर लौकिक पिता कौन सा है, किसी को घर आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, छोटी छोटी बातें कोर्स में सिखाया, एग्जीबिशन समझा के आते थे तो पूछते थे बच्ची क्या प्रश्न पूछे उन्होंने, तुमने क्या जवाब दिया, तो बाबा फिर सुन करके थोड़ा एक ही शब्द में सुनते थे, फिर वो हफ्ता भर को एग्जीबिशन चली है यहाँ पर की बात है, तो फिर बाबा दूसरे दिन मुरली में कैसे समझाना चाहिए, उत्तर कैसे देना चाहिए, ये प्रैक्टिकल में पढ़ाना भी सिखाया, ज्ञान की गहराई में जाना भी सिखाया, कभी वरदान दिया बच्ची तुम बदली हो ज्ञान की, जाओ बरस के फिर आ जाओ भर के फिर जाके बरसो, कभी फायर ब्रिगेड कहा दुनिया में आग लगी है जाके बुझा के आओ, कभी कभी ज्ञान बुलबुल कहा ज्ञान की गीत सुना रही हो, यानी एक एक, कभी कहा बच्ची रत्नों की खान हो, खुद सागर खान बना दिया, तो बाबा के वरदान भी बहुत है और कहानियां भी बहुत है, समय को देखते हुए अभी कहानी डिटेल में तो नहीं सुनाऊंगी, पर लास्ट नवंबर 68 का अनुभव सुनाती हूँ, दो तीन मिनट लगेगा। बाबा मेरा हाथ पकड़ करके ट्रेनिंग सेंटर दिखा रहे थे, बंद रहा था उस समय, सीमेंट नहीं हुआ था, बाकी सारा बन चुका था, फाइनल कोट रहा था, तो कहा बच्ची ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं ना, तुमको तुम कुमारियों की ट्रेनिंग करानी है। फिर मेरा वह हाथ पकड़ करके बाबा जब ये आप विशाल भवन में जाते हैं या डाइनिंग रूम में जाते हैं तो वहां स्टेप्स बने, अभी स्टेप्स है, वो छोटी सी पहाड़ी थी, हिल था, बाबा लंबे मैं छोटी, मेरा हाथ पकड़ा जैसे मुझे मतलब उठाया, तो मेरे को बाबा का हाथ रुई जैसा और ऐसा लगा लाइट इसमें से आ रही है, मैं सारा बाबा के शरीर को देखा, मैंने कहा ये सूक्ष्म वतन वाला फरिश्ता बाबा नीचे आ गया, ये तो पहले वरदान दिया था एक बारी अमृत वेले के बाद वतन तुम्हारे पास आ जाएगा, तो मैंने कहा वतन वाला बाबा मेरे पास आ गया, तो मैं तो गुम हुई उसी में बाबा को देखते, फिर बाबा ने मेरा हाथ प्रेस किया बच्ची चलो, तो आगे दिखाया विशाल भवन से पहले मिस्त्री सीमेंट और रेत को मिक्स कर रहा था, फाइनल ट्रेनिंग सेंटर को कोट की कोटिंग इनसाइड आउटसाइड, तो बाबा ने कहा देखो बच्ची इस मिस्त्री को पता है कि रेत कितने परसेंटेज में लानी है, सीमेंट तो मेन है, ऐसे बाबा की श्रीमत बाबा देता है, फिर कहते हैं प्लानिंग बुद्धि बनो प्रोग्राम बनाओ कितने परसेंटेज में मिक्स करना, अपना आइडिया देना है, अगर देखो ये मिक्स हो गई रेत ज्यादा तो दीवार की शोभा खत्म हो जाएगी, तो अगर मन मत मिक्स हो गई करेक्टर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बना रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर ब्रह्मा कुमार कुमारिया करेक्टर बिल्डिंग, उसकी शोभा तभी है जब मन मत मिक्स नहीं हो। आइडिया भले हुए, प्लानिंग बेशक हो, संगठन का बल हो। ओम शांति।
ओम शांति। साकार बाबा की पालना, उनके साथ के अनुभव बहुत ही न्यारे और प्यारे हैं। जैसे दीदी बता रही थी कि बाबा हर कार्य को परफेक्ट रीति से करने के लिए सिखाते थे, बाबा ने खुद भी किया और बच्चों को भी सिखाया, और बच्चों की पालना करते हुए बाबा ने कितना मजबूत बनाया, शक्तिशाली बनाया। आज हम सब के लिए प्यारे बाबा का अव्यक्ति दिवस, स्मृति दिवस, समर्थि दिवस है। बाबा के बारे में जैसे सोचते हैं, दिल प्यार से और वरदानों से भर जाता है। कैसे बाबा ने एक एक बच्चे की पालना की, वो भी हम सब समय प्रति समय बाबा के साथ के अनुभव पाते सुनते रहते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली। और दूसरा और सौभाग्यशाली है जो संकल्प की रचना है, वह भी बाबा उनको अभी भरपूर कर रहे हैं। तो आज हम सब मिलकर के प्यारे बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग से पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर प्रताप और आत्म प्रकाश भाई, मोहन सिंगल भाई, सूर्य भाई, बनारसी भाई स्टेज पर आकर के बैठे। आत्म प्रकाश भाई, प्रताप भाई आ जाए। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम सभी बाबा के पास जाएंगे। जो बाबा के पास भोग के लिए जाएंगे वो हाथ खड़ा करो, जो जाएंगे हाथ खड़ा करो, क्योंकि आज का दिन है सबको बाबा के पास जाने का। ऐसा नहीं है आप नहीं भी जाएंगे, बाबा आप सबको बुलाएंगे, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। सबको वतन में जाना है और बाबा आप सबसे तो क्या, पूरे विश्व की आत्माएं पूरे ब्राह्मण परिवार से बाबा मिलन मनाएंगे, इसलिए सबको बहुत प्यार से बाबा के पास जाना है। अभी हम सभी बाबा को भोग स्वीकार कर, रवि भाई बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद लाइन में ही सब जाएंगे शांति स्तंभ की ओर। जैसा कि आपको पहले से ही बताया गया था, बहनें जाएंगी इंद्रप्रस्थ के गेट की ओर से और भाई जाएंगे मेन गेट की ओर से। रवि भाई बोलो, वर्षा को बुला लो। वर्षा बहन मंच पर आ जाइए। और अच्छा, हाँ भाई इंद्र, अच्छा वर्षा बहन, कोल्हापुर की सुनंदा बहन, अमरावती की सीता बहन मंच पर आ रही। वर्षा बहन, कोल्हापुर की सुनंदा बहन, अमरावती की सीता बहन मंच पर आ जाए। केवल ये बहने या भाई मंच पर नहीं है, आप सभी कहाँ हैं? बोलो कहाँ हैं? बाबा के दिल तख्त पर। बाबा हर बच्चे को अपने दिल के तख्त पर बिठाता है, आप सभी बाबा के दिल तख्त पर हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पांडव भवन में कितनी सुंदर फूलों की सजावट हुई है। जितना बाबा बच्चों को प्यार से सजाते हैं, बाबा बच्चों का हर बच्चे का श्रृंगार करते हैं, तो ऐसे ही हम बच्चों के मन की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को फूलों के श्रृंगार के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारे हैदराबाद, गुजरात और भी कई स्थानों से आए हुए भाई बहनों ने बहुत प्यार से डेकोरेशन की है। उसके निमित्त हमारे देव भाई शांतिवन से सुरेश भाई, इनकी पूरी टीम, इन सब ने बहुत प्यार से किया है। तो एक हाथ की ताली बजा करके हम सब उनको बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। और प्यारे बाबा तो ये दृश्य देख ही रहे हैं, जितना हम बाबा के लिए करें उतना कम ही है। बाबा ने जो किया है उसके रिटर्न तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं, हमें बस बाबा जो कहते हैं वो करके दिखाना है। अच्छा, अभी हम चलते हैं, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। रवि भाई कुछ डायरेक्शन,
फूल जो है, फूल गुलजार दादी उपवन से फूल भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, तो ये भी अपने घर के खेत के फूल, बाबा के घर के बाबा को ही समझ सकते तने फूल।
जो फूल सजाने वाले सेवाधारी बैठे हैं अपना हाथ खड़ा करें, आप सभी को स्नेह और सकाश मिलेगी। बहुत बढ़िया, कम है शायद, सभी यहां बैठे नहीं हैं। और सभी, जैसे आदरणीय बहन जी ने बताया, याद रखिएगा जब आप संदेश सुनने के पश्चात चार धाम यात्रा के लिए यहां से जाएंगे तो सभी भाइयों को इंद्रप्रस्थ के पीछे एक छोटा गेट है, उसी गेट से आपको अंदर जाना है। और सभी बहनें, चाहे माताएं हैं, टीचर्स हैं, सभी बहनें पांडव भवन के मुख्य द्वार से, मेन गेट से ही अंदर प्रवेश करेंगे। हाँ, जो भाई लोग यहां से जाएंगे तो सामने वाले गेट से सीधा सीधा, जैसे हम शांति स्तंभ पर जाते हैं हिस्ट्री हॉल के सामने से, वहां से जाने का आग्रह ना करें। डिस्पेंसरी की तरफ से अंदर से एक गली है, वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए सभी भाई उपस्थित हैं। वो जैसे आपको डायरेक्शन देंगे आप वैसे ही डायरेक्शन फॉलो करके व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देंगे।
रशिया से आए विजय भाई भी मंच पर आ गए। अभी हम सब मिलकर के प्यारे बाबा के पास जाएंगे, वतन में बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आगे की सीट खाली है, देव भाई प्रकाश भाई आगे आके बैठो, सीट खाली है, आगे आ जाओ। प्रकाश भाई, देव भाई आगे आके बैठो।
कोई भी सभा से उठेंगे नहीं, आप अभी अपने स्थान पर बैठे रहिए, क्योंकि अभी हम बाबा का संदेश सुनेंगे। आदरणीय शशि बहन जी वतन से बाबा का संदेश लाए हैं, वो हम सभी सुनेंगे, उसके बाद ही आपको चारधाम यात्रा के लिए जाना है। कृपया वापस बैठ जाएं। और एकदम उठना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि फिर थोड़ा सा दूसरों को तकलीफ होती है। जब भी उठेंगे आराम से धीरे धीरे उठेंगे, लेकिन अभी आप बैठे रहिए थोड़ी देर।
बाबा की स्मृति दिवस के निमित्त सब भाई बहनों की स्नेह भरी यादों के साथ, जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन की शोभा बहुत सुंदर, बहुत प्यारी और ऐसे ही दिल में खो जाने वाली थी। चारों ही तरफ कहां पर लाइट की डेकोरेशन, कहां पर मालाएं और कई अलग अलग प्रकार के डिजाइन के लाइट्स चमकती हुई दिखाई दे रही थी, और वहां पर बहुत सुंदर, इतना प्यार भरा म्यूजिक था, जो म्यूजिक सुनते ही उसके म्यूजिक के आवाज में खो जाए, दिल भरपूर हो जाए, भर जाए, ऐसी वासना आ रही थी। लेकिन बाबा नहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड में मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ी सुंदर सी पहाड़ी है, बाबा वहां खड़े हैं और उस पहाड़ी के सामने एक तरफ प्रयोगशाला थी, जिसमें कुछ रिसर्च करने वाले रिसर्च कर रहे थे, दूसरी तरफ देख रहे थे सभी धर्म के धर्म पिताएं, वह इतना मस्ती में थे परमात्मा की याद में, वो उसमें लगे हुए थे। और तीसरी तरफ मैंने क्या देखा कि बहुत से लोग हैं वो ऊपर की ओर देख रहे हैं, दो हाथ जोड़ करके जैसे अपने इष्ट देव को पुकार रहे हैं या कुछ अपनी मनोकामना के लिए अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, और बाबा देख रहे थे। तो बाबा ने वरदानी हाथ किया, बाबा के वरदानी हाथ से जो रिसर्च करने वाले थे उनके पास एक इतनी सुंदर लाइट ऊपर से नीचे आती है, और उनको लगता है ये बहुत बड़ी एनर्जी आई है, उसको देख करके और उनकी रिसर्च के अंदर भी उनको बहुत ऐसे हल्कापन और वो कार्य सहज होता जा रहा था। जो दूसरी तरफ महात्माओं का, उनकी तरफ भी बाबा ने ऐसे दोनों बहों से कहा, ये भी विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त उनको बाबा जैसे दृष्टि दे रहे हैं उस दृष्टि से उनको लगता है कि अब कुछ नया कार्य होगा, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो वो कहते हैं कि अब हमें आध्यात्मिकता के द्वारा कुछ विशेष कार्य करना है। और तीसरी तरफ जो लोग पुकार रहे थे, अपने इष्ट को याद कर रहे थे, उनके ऊपर तो लाइट की छोटी छोटी किरणें पहुंच रही थी और उनको लगता था अब समय आ गया है कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहे हैं। तो ऐसे दृश्य देखने के बाद दूर से फिर बाबा ऊपर से एक पुष्पक विमान के अंदर आकर के फिर वतन में वो दृश्य जहाँ म्यूजिक था वहाँ पहुँचे और मेरे को देख करके बाबा मुस्कुराने लगे और कुछ सेकंड में उस म्यूजिक की आवाज में बाबा इतने खो गए जैसे बाबा बच्चों को गोदी में लेकर दोनों बाहों में लेकर अपने दिल में समा लिया हो। वो दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। फिर मैंने कहा बाबा आज आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा आज का दिन विश्व की हर आत्मा के लिए चाहे वो जाने या ना जाने विशेष दिन है। और जो नई दुनिया में आपके साइंस मदद करेगी, रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी आज के दिन बाबा ऐसा अनुभव और शक्ति दे रहे हैं ताकि वो कार्य अपना इतना अच्छा परफेक्ट करें जो आपकी भविष्य दुनिया में काम में आएगा। और दूसरी बात कही कि बाप की प्रत्यक्षता में बच्चों का तो कार्य है ही है, लेकिन ये धर्म पिताएं भी उनका जो सहयोग है वो भी विशेष है। तो बाबा भी उनको विशेष आज अनुभव करा रहे थे। और तीसरी तरफ समय आ गया है भक्तों को अपने ईष्ट के द्वारा अनुभव करने का, वो भी आज के दिन बाबा गुप्त रीति से उन्हें करा रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा आज तो एक एक बच्चा आपको याद कर रहा है। बाबा ने कहा आज अमृत वेले से बाबा हर एक बच्चे के पास पहुंचे, उनकी दिल की भावनाएं, दिल का प्यार देखकर बाबा को भी इतना आ रहा था कि मेरे बच्चे सारे विश्व से कितने ऊंच महान और भाग्यशाली हैं। और बाबा ने कहा आज बाबा खास इस यज्ञ के जो आधार मूर्त हैं उनके साथ सारे विश्व का चक्कर लगाया। तो जैसे बाबा ने कहा यज्ञ के आधार मूर्त, तो उसी समय मम्मा दादी दीदी और दादी जानकी गुलजार दादी चलो सब दादियां और दादे पूरे ग्रुप के अंदर बाबा के सामने इमर्ज हुए और बाबा को ऐसे दोनों तरफ बाहों में पकड़ करके बाबा ये कार्य कब जल्दी संपन्न होगा? बाबा ने कहा कि बाबा ने तो ये कार्य की जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर रखी है, जिम्मेवारी का ताज है। उसमें एक ग्रुप है जो गुप्त रीति से कर रहा है जो आप कर रहे हैं, और दूसरा ग्रुप है जो गुप्त के साथ साथ सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, जिसके लिए बाबा ने कहा वो सब अभी कर रहे हैं। लेकिन इस कार्य को संपन्न करने के लिए बच्चों को क्या करना है वो फिर बाबा ने बाद में बताया। फिर बाबा ने क्या किया, आओ बच्चे करते ही सबको अपने सामने इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए बाबा की दृष्टि और वरदानी हाथ से हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। तो बाबा को, बाबा ने कहा आज बच्चों के स्नेह को देखकर बाबा भी खुश हैं, तो आज बाबा बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। बच्चों को कहा पहले आप क्या गिफ्ट देंगे, तो सब हंसने लगे, बाबा क्या दें, हम तो बस प्यार में खोए हैं। तो बाबा ने कहा बस प्यार में खोना सर्व प्राप्ति संपन्न होना। फिर भी बाबा ने कहा बाबा बच्चों को गिफ्ट देंगे, तो जैसे गिफ्ट का नाम लिया तो एक कमल पुष्प था, और कमल पुष्प के बीच में जो गोल होता है उसमें एक बहुत सुंदर टावर बना हुआ था, वो सबके पास पहुंचता है। बाबा ने कहा बच्चे अभी समय प्रमाण सब प्रकार से बंदरों से अपने को मुक्त करना है, और कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनना है। फिर बाबा ने कहा अभी समय चेतावनी दे रहा है, ऐसे समय पर आप बच्चों को लाइट हाउस और माइट हाउस बन करके सबको प्रत्यक्षता का डंका बजाना है, और बच्चों को इसके लिए क्या करना है। बाबा ने फिर कहा हर बच्चे को अपना समय श्वास और संकल्प सफल करना है तो सफलता मूर्त बनेंगे। फिर बाबा सब बच्चों को प्यार कर रहे थे, और एडवांस पार्टी वाले भी सबको देख करके बाबा को कहते हैं बाबा ये सब कितने लक्की हैं जो दोनों पार्ट को, अव्यक्त पार्ट को भी और साकार पार्ट को देखते हुए बजा रहे हैं। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया, और भोग स्वीकार कराते ही बाबा ने फिर से वो कमल का पुष्प दिखाया और साथ में कहा अभी बच्चों को अपना समय सोचने में या इधर उधर की बातों में नहीं लगाना है, सब संकल्प हर संकल्प को सफल करना है, क्योंकि समय जो है वो आपकी परीक्षा भी लेगा और समय आपका मदद भी कर रहा है, समय सहयोगी भी है, परीक्षा भी देगा और कल्याणकारी भी है। फिर बाबा ने सबको याद दिया ओम शिव।